यशाया अध्याय 56। यशया की पुस्तक अध्याय 56 खोले। यशया अध्याय 55 में यहोवा ने अपने अनंत उद्धार की महिमा का और अपनी प्रतापी महानता और सामर्थ का वर्णन किया है। यशाया 55:9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के वचन की आशीष और सामर्थ के लिए यशया कहता है। यशाया अध्याय 55:10-11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। यशाया अध्याय 56 में परमेश्वर हमें इस अनंत राज्य और उद्धार की शर्तों का विवरण देता है। यशाया अध्याय 56:1। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। यशया के युग में भी प्रोत्साहन का अवसर था कि मनुष्य उचित कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार निकट है। मेरे विचार में परमेश्वर ने चाहा कि प्रत्येक पीढ़ी इस बोध के साथ आचरण करे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। पत्रस हमें कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य परमेश्वर के राज्य के आगमन की निकटता का टट्ठा करेगा और कहेगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3:4। सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ में था, परंतु पत्रस कहता है कि वे जानते हुए अनजान बनते हैं। परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय भेजकर संसार को उतल पुतल कर दिया था, अतः ये लोग जानते हुए परमेश्वर के विनाश के प्रति अज्ञान दर्शाते हैं। पत्रस आगे कहता है, दूसरा पत्रस अध्याय 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, ये उसके आने वाले राज्य और धर्म के राज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा है। वो अपनी प्रतिज्ञा में चूकेगा नहीं, परंतु उसकी एक ही इच्छा है कि एक का भी नाश न हो और प्रत्येक मनुष्य मन फिराए। अतः उसके विलंब करने का कारण ये है कि मनुष्य उसकी ओर मन फिराए। जब हम इससे पूर्व एक कलीसिया में सेवा दे रहे थे, तब वहां एक बड़ी विचित्र महिला थी। जहां तक मुझे ध्यान है कि वो आराधना में नहीं आती थी, परंतु वो कहती थी कि उसे मेरी पत्नी और मुझसे अत्यधिक प्रेम है। वो बड़ी ही रोचक महिला थी। उसने चीन में अनेक वर्ष सेवकाई प्रदान की थी। व्यवसाय से एक नर्स थी। मैं जब भी उसे प्रभु के आगमन की निकटता के विषय चर्चा करता था, तब वो कहती थी, जी हाँ, मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर अति शीघ्र मेरे लिए आ रहे हैं। वो कहती थी, मैं आयु में बढ़ती जा रही हूँ और मैं अधिक समय जीवित नहीं रहूंगी, अतः प्रभु का आगमन मेरे लिए अति शीघ्र होने वाला है। उसके विचार में प्रभु के आगमन की निकटता यही थी। एक प्रकार से ये अति सत्य भी है कि हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु का आगमन अति निकट है। हम में से कोई भी यहां अधिक समय नहीं रहेगा। यदि वो अपनी कलीसिया के समूह के लिए इतना शीघ्र नहीं भी आया, तो भी पृथ्वी पर हमारा समय बहुत कम है। याकूब अध्याय 4:14। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जीवन उस घास के समान है जो मैदान में उगती है और फूलती है और कल खत्म हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन काल भी बहुत कम है, परंतु इसी अल्प काल में मेरा अनंत जीवन निर्धारित किया जाता है। मेरा भविष्य इसी अल्प काल में निर्धारित किया जाता है। ये बड़ा ही कमाल का विचार है। अतः ये मुझे मेरे हित के लिए कहता है कि मैं अपने समय को प्रभु की संगति में और सेवा में लगा दूं। मैं अपना पूरा जीवन और क्षमता उसको समर्पित कर दूं, क्योंकि समय बहुत कम है। अतः यशिया कहता है, परमेश्वर का समय निकट है। वो हम में से प्रत्येक के निजी जीवन के विषय में कह रहा है। हमारे लिए प्रभु का समय सदैव निकट ही है। इस कारण हमें उस विवेक के साथ जीवन व्यतीत करना है कि मेरे पास एक ही जीवन है और वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, और मैंने मसीह यीशु के लिए जो किया है वो ही स्थिर रहेगा, बाकी सब लकड़ी, भूसा और चारा है, सब नष्ट हो जाएगा। अनंत राज्य में संसार की बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैंने जो कुछ अपने लिए किया है, मैंने जो कुछ समाज के लिए किया है, मैंने जो कुछ शारीरिक विकास के लिए किया है, कुछ भी नहीं रहेगा। जो बातें रह जाएंगी वे केवल वही होंगी जो मसीह यीशु के लिए, उसकी महिमा के लिए और उसके नाम के लिए की है। अतः समय बहुत कम है। प्रत्येक पीढ़ी के लिए ये एक सतत संदेश है कि हमारे पास समय बहुत कम है। परमेश्वर हमसे कैसा जीवन आचरण चाहता है? वो चाहता है कि हम न्याय करें और न्याय का पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम निष्पक्षता और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धोखा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुरी युक्ति सोचें और किसी से लाभ उठाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उचित काम करें, न्याय करें और न्याय का आचरण रखें। यही तो परमेश्वर कहता है और हमसे चाहता है। निश्चय ही ये कोई अधिक काम तो है ही नहीं, और मनुष्य से ये आशा रखना तर्क संगत ही है। ये संसार कैसा महिमामय होगा जब प्रत्येक मनुष्य दूसरे के साथ निष्पक्षता का, ईमानदारी का और न्याय संगत आचरण रखेगा। परंतु संसार की स्थिति ऐसी नहीं है। आपका कहना उचित है और आप सही भी है। हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य ऐसा ही है कि वो अपनी स्थिति का लाभ उठाने में तत्पर रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई उपलब्ध है जिसे वो अपने लाभ के लिए फांसी चढ़ा सकता है। किसी के लिए लाभ का कारण बन जाना एक बड़ी त्रासदी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य आपसे हरेक परिस्थिति का लाभ उठाएगा। उदाहरण के रूप में पेट्रोल को ही ले लीजिए। ये जानते हुए कि आज विश्व को तेल की सख्त आवश्यकता है, तेल उत्पादक देश तेल की कीमतों को बढ़ाते जा रहे हैं और अत्यधिक धनी बनते जा रहे हैं। उनके पास इतना अधिक धन है कि वे स्वयं नहीं जानते कि उसको खर्च कैसे करें या उसका क्या करें। दूसरी ओर तीसरी दुनिया के देश है जो इसी स्वार्थ और लाभ के कारण दुख उठा रहे हैं और आवश्यकताओं से ग्रस्त है। आज संसार में तेल का राज हो गया है। वे तेल के कारण ऐसे अवसर का ऐसा लाभ उठा रहे हैं कि संसार के गले में फांसी लग रही है। उन्हें संसार के उस भाग का लिहाज ही नहीं जो तेल की इन बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रास्फीति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल एक उदाहरण है। मेरा उद्देश्य किसी एक पर उंगली उठाना नहीं है। ये तो मनुष्य का स्वभाव है। यदि आपकी स्थिति खराब है तो निश्चय ही आपको ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो आपसे लाभ उठाएंगे। यीशु ने कहा, हाय तुम पर शास्त्रियों, ढोंगियों, क्योंकि वे मनुष्यों की स्थिति से लाभ उठा रहे थे। वे मनुष्यों की त्रुटियों तथा उनकी समस्याओं का लाभ उठा रहे थे और उनसे धन उपार्जित करके धनी बन रहे थे। मनुष्य निष्पक्ष नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि हम निष्पक्ष रहें। यही कारण है कि परमेश्वर न्याय और निष्पक्षता की पुकार करता है और कहता है, मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। यशाया अध्याय 56:2, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता। परमेश्वर कहता है कि न्याय का पालन करने वाला, धर्म के काम करने वाला और ईमानदार मनुष्य परमेश्वर की आशीषों का पात्र होता है। यशाया अध्याय 56:2 में आगे लिखा है, और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, वो मनुष्य जो इस सिद्धांत पर चलता है और कहता है, हां मैं अन्यों के साथ वैसा ही करूंगा जैसा मैं चाहता हूं कि वे मेरे साथ करें, मैं निष्पक्ष व्यवहार करूंगा और मैं अपने पद से लाभ नहीं उठाऊंगा, मैं अन्याय नहीं करूंगा। परमेश्वर सदैव दलित वर्ग और शोषित वर्ग का तथा दरिद्रों का पक्ष लेता है। यदि हम मनुष्य के शोषण और दरिद्रों के खून पसीने के दोषी हैं, तो हम परमेश्वर के समक्ष अपराधी पाए जाएंगे। धन्य है वो पुरुष, यशाया अध्याय 56:2 के अंत में लिखा है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। यहां उस मनुष्यों के लिए आशीष की प्रतिज्ञा है जो सबत दिन को पवित्र मानते हैं। सबत या विश्राम का दिन एक नियम था जो परमेश्वर ने इस्राएल के वंशजों को दिया था, क्योंकि ये उस जाति के साथ परमेश्वर की वाचा थी। निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम के दिन के विषय में इस्राएल के वंशजों से कहा था कि वो नियम जो उसने इस्राएल को दिए हैं, वो सदा सर्वदा के लिए उनके साथ परमेश्वर की वाचा है। देखिए निर्गमन अध्याय 31:16, इस्राएली विश्राम के दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। परमेश्वर ने खतना द्वारा उनके साथ सदा की वाचा बांधी थी। विश्राम दिवस की वाचा परमेश्वर ने अन्य जातियों या अन्य जातियों की कलीसिया के साथ नहीं बांधी थी, परंतु मनुष्य को विश्राम के एक दिन की आवश्यकता होती है। यदि हम सप्ताह में एक दिन अवकाश रखें और विश्राम करें, तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम ही होगा। विश्राम दिवस की यही अनिवार्यता थी कि केवल विश्राम किया जाए, शरीर को पुनः जीवित होने का अवसर प्रदान किया जाए। इस्राएली विश्राम के दिवस का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे थे, वे उस दिन को राग रंग का दिन बना चुके थे। आज हम भी इसके दोषी हैं। सबत का दिन वास्तव में शुक्रवार सूर्यास्त से शनिवार सूर्यास्त तक होता है। हम तो प्रभु की आराधना रविवार को करते हैं, जो सप्ताह का प्रथम दिवस है। जब आरंभिक कलीसिया में अन्य जातियों से आए विश्वासियों के संदर्भ में व्यवस्था की प्रासंगिकता का विषय आया, तब ये माना गया कि उन पर दासत्व का जुआ ना डाला जाए, अर्थात उस व्यवस्था का जो यहूदी स्वयं ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। अतः अन्य जातियों के विश्वासियों को ये निर्देश लिखित में दिया गया था। मूर्ति पूजा और गला दबाकर मारे गए जानवरों के मांस से वे दूर रहे, इस प्रकार उसका आचरण स्वीकार्य होगा। उत्तर काल में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय पौलुस ने इसमें सुधार किया और लिखा, जब तुम दुकान पर मांस खरीदने जाते हो तो उसे मत पूछो कि क्या वो जानवर मूर्ति को चढ़ाया गया था, क्योंकि यदि उसने हां कह दिया तो वो अनर्थ का कारण होगा। इसलिए तुम्हें मन में संदेह लाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। पौलुस ने कहा, प्रार्थना द्वारा प्रत्येक वस्तु शुद्ध की जाती है। यदि तुम्हारा विवेक स्वच्छ है तो इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कोई प्रश्न मत पूछो, जो तुम्हारे सामने है उसे खा लो। पौलुस ने कहा, भोजन का आनंद लो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, परंतु वो जो मुंह से निकलता वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि मन के विचार मुंह से बाहर आकर मन को प्रकट करते हैं। अन्य जातियों के विश्वासियों को सबत के दिन के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया गया था। पौलुस रोम की कलीसिया को उनके विषय में लिख रहा था जो शाकाहारी थे और मांस नहीं खा पाते थे। उनका भय सदा यही होता था कि मांस कहीं न कहीं मूर्तियों को चढ़ाया हुआ हो सकता है, इसलिए वे शाकाहारी बन गए थे। परंतु जिसका विश्वास दृढ़ था वो मांस खाता था, इसलिए वो जो मांस नहीं खाता था मांस खाने वाले का न्याय ना करें, उसका तिरस्कार ना करें। हमारे लिए ऐसी परीक्षा में गिर जाना कितना आसान होता है कि हर एक जन वैसा ही जीवन व्यतीत करे जैसा मैं व्यतीत करता हूं और वैसा ही सोचे जैसे मैं सोचता हूं। मुझे कैसा आनंद प्राप्त होगा यदि मैं संसार की व्यवस्था करूं और मनुष्य को बताऊं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु पौलुस कहता है कि हमें उनका न्याय नहीं करना है जिन्हें हमसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य सभी के सामने गिरता है या खड़ा रहता है, परमेश्वर ही मनुष्य को खड़ा करता है। इस बात पर मैं अचंभा करता हूं। कुलुसे की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, कुलुसियों अध्याय 2:16-17, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा फैसला कोई ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया थी, वास्तविक विषय तो मसीह यीशु है। अतः सबत का दिन तो हमारे लिए केवल यीशु की छाया था, क्योंकि हमारा वास्तविक विश्राम तो यीशु ही है। सबत का दिन तो वो दिन था जिसमें विश्राम प्रदान करते थे। अब मसीह ही हमारा सबत बन गया है, वही मेरा विश्राम है, तथा सबत का उत्सव मसीह यीशु की प्रतीक्षा था, जो वास्तविक विषय है और विश्वासी के लिए विश्राम है। हम सब का उद्धार उसी में है, यही सारी बातों का सार है। अतः जब हम सबत दिवस के विषय पढ़ते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि यशाया इसराइल को संबोधित कर रहा था। इसका अन्य जातियों से या अन्य जातियों की कलीसिया से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि पौलुस ने कहा है, रोमियो अध्याय 14:5, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक साथ जानता है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। हम तो प्रत्येक दिन को एक सा मानते हैं, प्रत्येक दिन प्रभु का दिन है। मैं सुबह जागता हूं तो कहता हूं, प्रभु ये दिन तेरा है, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। मेरे लिए तो प्रत्येक दिन एक सा है। मैं कैलेंडर में नहीं देखता हूं कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये प्रभु का दिन है, मेरा जीवन उसी का है। कैलेंडर कोई भी दिन बताए, मेरे लिए तो हर दिन प्रभु का दिन है। परंतु क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। यशाया अध्याय 56:3, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रजा से अलग है। परमेश्वर ने, पौलुस कहता है, मसीह ने उस विभाजन की दीवार को गिरा दिया है जो यहूदियों और हमारे मध्य खड़ी थी, और उसने हमें मसीह के द्वारा एक ही सहभागिता में सहभागी बनाया है। अतः मुझे ये नहीं कहना है मैं तो परमेश्वर की प्रजा से अलग हूं। अपने आप को यहूदियों से पृथक मानूं, परंतु हम तो उनमें रोपित किए गए हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों और प्रतिज्ञाओं को जो उसने इस्राएल राष्ट्र को दी है उनको गंभीरता और परिपूर्णता से प्राप्त करें। यशाया अध्याय 56:3-5 और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटाया जाएगा। यीशु ने व्यक्त किया है कि कुछ मनुष्य जन्मजात नपुंसक होते हैं, परंतु कुछ लोग परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बन जाते हैं, अर्थात वे विवाह नहीं करते हैं कि वे प्रभु की सेवा भली प्रकार से कर सके। प्रेरित पौलुस इस श्रेणी में ठीक बैठा था। हम नपुंसक शब्द को उसके शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित रखते हैं, परंतु मेरे विचार में बाइबल के अनुसार इस शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है। मेरे विचार में ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य के निमित्त ब्रह्मचार्य का पालन करता है। वो जो विवाहित होता है वो पहले अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है, परंतु एक अविवाहित व्यक्ति केवल प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। एक प्रकार से अविवाहित व्यक्ति ठीक भी होता है, क्योंकि मसीह की सेवा में उस पर आने वाले कष्टों को वो अकेला ही सहन करता है, अन्यथा उनकी पत्नी को भी कठिनाइयां और कष्ट सहन करना पड़ेंगे। अतः पौलुस कहता है कि कार्य साधना हेतु तुम्हें मेरे जैसे जीवन रखना उचित ही है, परंतु यदि कर सको तो अन्यथा विवाह कर ले, ये पाप नहीं है। इस प्रकार तुम अनेक समस्याओं से बचे रहोगे। अतः अनेक है जो परमेश्वर के राज्य के निमित्त ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ये अच्छा है। प्रभु ने कहा मैं उन्हें आत्मिक संतान पुत्र और पुत्रिया दूंगा। पौलुस भी तो अपने प्रिय पुत्र तिमोथियस आदि के बारे में कहता है और वह उनके साथ अपने संबंधों को भी दर्शाता है। उसने उन्हें आत्मिक जीवन में प्रशिक्षण प्रदान किया था। यशाया अध्याय 56:6-7, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहूदियों ने मंदिर के निर्माण में इस निर्देश पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने अन्य जातियों के लिए एक परिसर तैयार किया हुआ था। उनका अन्य परिसर में जाना मना था, क्योंकि वहां लिखा होता था कि वहां अन्य जातियों का प्रवेश वर्जित है, अन्यथा जान को खतरा है। पौलुस के साथ भी यही समस्या आ गई थी। वो मरते मरते बचा था, क्योंकि उन्होंने सोचा पौलुस किसी खतना रहित को साथ लेकर यहूदियों के परिसर में प्रवेश कर गया है, परंतु पौलुस दोषी नहीं पाया गया था। सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने घोषणा की थी कि उसका घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। अतः वो यहां कहता है कि परदेशी भी, अर्थात वे जो यहूदी नहीं थे परंतु उसकी सेवा टहल करना चाहते थे, उन्हें भी परमेश्वर चाहता था कि वे परमेश्वर के भवन में आनंदित हो। ध्यान दीजिए कि जब यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया था, तब उसने वहां लगे बाजार और लेन देन करने वाले को देखा था। उसने कोड़ा बनाकर सबको बाहर निकाला और उनके तख्ते पलट दिए। उस समय उसने क्या कहा था, लिखा है मत्ती अध्याय 21 पद 13, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। वो इस निंदा के कामों से अत्यधिक क्रोधित हुआ था। दूसरे शब्दों में, वे अन्य जातियों से तो अपने मंदिर को शुद्ध रखते थे, परंतु अपने कामों से वे मंदिर को अशुद्ध कर रहे थे। मंदिर में दान केवल शेकेल में, जो कि यहूदियों की मुद्रा प्राचीन थी, में दिया जाना अनिवार्य था। अतः वहां सराफ बैठा करते थे कि रोमी मुद्रा का विनिमय मंदिर की मुद्रा शेकेल में करें, क्योंकि रोमी मुद्रा को वे अशुद्ध मानते थे, अतः वो मंदिर में दान के योग्य नहीं थी। आप कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई ये है कि उनकी विनिमय दर बहुत ऊंची होती थी, और जितना पैसा मंदिर में जाता था उसका एक बड़ा भाग वे इस प्रकार अपनी कमीशन बनाकर रख लेते थे। इस प्रकार रोमी मुद्रा को शेकेल में परिवर्तित करने की दर द्वारा वे परमेश्वर की संपत्ति को मंदिर में जाने की अपेक्षा अपनी तिजोरी में भर रहे थे। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो वे परमेश्वर की चोरी कर रहे थे। यही कबूतरों के विषय था। बाजार में आपको एक कबूतर कुछ रुपयों का मिल जाता था, जबकि मंदिर में उसका मूल्य बहुत अधिक था। याजक भी उनके साथ मिले हुए थे। यदि आप बाहर से कोई कबूतर ले आए तो याजक उसको बड़े ध्यान से देखकर उसमें कोई न कोई दोष खोज निकालता था, क्योंकि आपको निर्दोष प्राणी की बलि देना है। अतः वो कबूतर आप बलि नहीं चढ़ा सकते थे, इसलिए याजक उस कबूतर को चढ़ाने से मना कर देता था। यदि आप मंदिर परिसर में ही कबूतर खरीदते हैं तो उस पर मोहर लगी होती है कि ये कबूतर कोशर स्वच्छ है, परंतु उनकी कीमत बहुत अधिक होती थी। कहने का अर्थ यह है कि वो एक प्रकार की लूट और चोरी थी, जिससे प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुआ और उसने यशया के इस पद का संदर्भ दिया, जहां परमेश्वर ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उसका घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो हरेक के लिए खुला रहेगा कि वे जो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रवेश करें और उसकी उपासना करें। अतः उसने कहा, यशाया अध्याय 56 पद 8, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठे करने वाला है, उसकी ये वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। सुसमाचार अन्य जातियों को लाएगा। यशाया अध्याय 56 पद 9, हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ, उसके पहरुए अंधे हैं। ये एक त्रासदी है कि आपके पास एक ऐसा चौकीदार है जो अंधा है। यशाया अध्याय 56 पद 10 और 11। वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है और निश्चय ही उनके विषय में है जो अपने ही लाभ को देख रहे हैं। सब अपनी ही सुख सुविधा और लाभ को देख रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर वही कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की गुफा बना दिया है। मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। वे ऐसे लालची लोग हैं, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। यशाया अध्याय 56 पद 12। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मधिरा पीकर चक जाएं। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा।